نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک ہو. اللهم أحله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اے اللہ، یہ رمضان کا چاند ہم پہ امن، ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال انشاءاللہ تعالی. اتنا مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دکھایا. ایک اور چانس ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، بخشش کروانے کا، نیکیاں سمیٹنے کا. الحمدللہ اس رمضان کا ہمارا جو تھیم ہوگا انشاءاللہ تعالی، جس پہ ہم پورا رمضان ورک کریں گے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا. یعنی جو اس وقت ہم جس لیول پہ کھڑے ہوئے، جب رمضان مکمل ہو انشاءاللہ، تو ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مزید بڑھ گیا ہے، قربت آ گئی ہے. اور اسی کے لیے ہم سارے وہ کام کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں، جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں، جو ہمیں اور جگہوں سے پتہ چلتے ہیں، قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کرام کے طریقوں سے، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا. اور اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ جب ہم قرب کی بات کرتے ہیں نا، دل میں ایک خیال سا آتا ہے کہ ہم تو اتنے گناہگار، اتنے خطا کار، اتنے ہم سے پتہ نہیں کیا کیا 11 مہینے میں ہم نے کیا ہے، ہم کہاں اللہ کا قرب پائیں، ہم کہاں اس قابل ہیں. یہ تو بڑے بڑے اولیاء کا، ان کا کام ہوتا ہے، بڑے بڑے نیک لوگوں کا، ہمیں کہاں قرب ملے گا. تو نہیں، یہ میدان کھلا ہوا ہے ہر ایک کے لیے. مایوس نہ ہوں، جتنے بھی گناہ ہیں، کتنے بھی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بخشش اس مہینے میں عروج پہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے کو تیار ہے. تو انشاءاللہ جو قربت ہم نے انشاءاللہ وہ تعالیٰ لینی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے بخشش کے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے. ظاہر ہے گندے مندے، میلے کچیلے، ایسے لوگوں کے کو کیسے قربت ملے گی نا. قربت ملنے کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم استغفار کریں، جو ہو چکا گزر چکا اس کے اوپر معافی مانگ کے زندگی کو سیدھا کر لیں. تو اس مہینے میں انشاءاللہ تعالی قربت پانے کے لیے ہم نے یہ سارے ہی کام کرنے ہیں. ویسے بھی یہ بخشش کا مہینہ ہے. مجھے تو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ جس کی بخشش یہاں پہ نہ ہوئی اس مہینے میں، اینڈ آف دا منتھ تک بخشش نہ پا سکا، وہ تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاکت ہے اس کے لیے. اس لیے بخشش کے لیے کوشش کرنی ہے، چھوٹے بڑے نیکی کے کام ڈھونڈنے ہیں، کس طرح اپنے رب کو ہم منا لیں، کس طرح ہم اس کو راضی کر لیں. تو نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کریں تو آپ کو پتہ ہے الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اس میں انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے ذریعے بھی ہم آسان آسان کام میں آپ کو بتاؤں گی، جن سے انشاءاللہ تعالی جن پر بخشش کا بھی وعدہ ہے، اللہ تعالی کی قربت بھی ملے گی. رمضان آتا ہی ہمیں پاک کرنے کے لیے، اگر ہم اس میں بھی نہ پاک ہوئے تو ظاہر ہے پھر تو تباہی ہی ہے. رب کی رحمت عروج پہ ہے، پھر بھی کوئی محروم رہ جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس سے کتنے ناراض ہیں کہ وہ ابھی بھی محروم رہ گیا. اور دیکھیں، ہم نے دنیا میں کسی کو منانا ہوتا ہے نا، کسی ناراض کو، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، اس کی پسند کے کام کرتے ہیں، اس کی منت سماجت کرتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، خود کو نیچا کرتے ہیں، کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں. تو جہاں معاملہ رب کا ہو تو اس کے سامنے تو اور بھی بچ جانا ہے، اور بھی جھک جانا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، उसको तोहफे भेजने हैं, नमाज के, रोज़े के, कुरान के, इन शक्लों में। तो कैसे तोहफे भेजना चाहेंगे, प्यारे प्यारे ना, क्योंकि असल मकसद क्या है, मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, मुझे अपने से करीब कर ले। तो इंशाल्लाह ताला इस महीने में हमने नमाज में भी देखना, नमाज का भी हम तर्जुमा भी सीखेंगे ताकि आप लोगों की नमाज़ों में खुशू हो सके। इंशाल्लाह ताला वुज़ू के बारे में, तहारत के बारे में, इसी तरह नवाफिल के बारे में और सुन्नतों का एहतमाम करना, ज़िक्र, दुआएं, कुछ सहाबा की ज़िंदगी से, सहाबियात की ज़िंदगी से सबक लेना, ये सब इंशाअल्लाह ताला हम इस माह में इससे गो थ्रू होंगे ताकि हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए। वो कनेक्शन जो टूटा हुआ है ना 11 महीने से, वो जुड़ जाए, वो तार जुड़ जाए, मज़बूती आए। तो सारा साल तो हम पे आप देखें एक गफलत सी छाई रहती है ना, नमाज़ें भी हमारी बस फ़राइज़ की हद तक और सर से उतारने वाली और इस तरह से। सिर्फ़ ये एक महीना ही तो है, एक महीने के लिए तो हम ख़ुद को सीधा कर लें, अल्लाह ताला के लिए कुछ चीज़ों से फ़रागत लेकर अपने आप को डेडिकेट करें। आप देखते हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान है, कुछ ही दिनों में 15 रोज़े हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये महीना मुकम्मल होने को आ जाएगा। तो वक्त तो कम है, कुछ लोग इस वक्त में किचन को ज़्यादा टाइम दे देंगे, कुछ बाज़ारों को टाइम देंगे, कुछ बिस्तर में ही घुसे रहेंगे। तो हमने इनमें से नहीं होना, हमने अपने वक्त को बेस्ट यूटिलाइज़ करना है, बेस्ट तरीके से। इसके लिए एक चीज़ जो आपको करनी ज़रूरी होगी, मुझे उम्मीद है आप सबके पास पेन पेंसिल होंगे, आप बात को लिख रहे होंगे क्योंकि ये बातें भूल जाएंगी, वो ये जो मैं अपने लिए भी इंशाल्लाह ताला करने का वो है, आपको भी यही चीज़ बताऊंगी। एवरी मिनट पे, हर मिनट पे ख़ुद को ये चेक करें कि इस वक्त मैं जो काम कर रही हूँ क्या इसमें मुझे कुछ सवाब मिल रहा है। मसलन मैं किचन में अगर सहरी या इफ्तार बना रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखवा रही हूँ या रोज़ा इफ्तार कराने का इंतज़ाम कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसको और भी ज़्यादा मैं बेहतर बना सकती हूँ साथ ज़िक्र कर करके, डबल अजर हो गया ना, या कुछ सुन के। अच्छा ज़िक्र नहीं किया जा रहा तो कुछ कोई कैसेट लगा लूँ तिलावत की, या कोई दौरे कुरान की, या कोई और तफसीर की, ताकि साथ साथ सुन भी रही हूँ और साथ डबल काम कर रही हूँ। मेरा रोज़ा भी है, साथ में इफ्तार भी बना रही हूँ, साथ में जिक्र भी करती जा रही हूँ। तो आप देखिए एक ही टाइम में आप अपने वक्त को किस तरह बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक चीज़ पे इक्तफा ना करें, यही काफ़ी है। मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, ड्राइव करते हुए मैं क्या कर रही हूँ उस वक्त सोचें, इस वक्त का मेरा टाइम क्या मुझे इसके ऊपर कोई अजल मिल रहा होगा। एक चीज़ पे नहीं, दो तीन चीज़ों को साथ मिलाएं। इसलिए क्या वजह मैं आपको बताती हूँ क्यों, हमारे पास ये 29 या 30 डेज़ हैं सिर्फ। आप ख़ुद सोच लें इन 29 30 डेज़ में आपने इतना कुछ जमा करना है कि बख्शिश हो जाए, कि अल्लाह की कुर्बत मिल जाए, उसके लिए कितनी दौड़ लगाएंगे। कितना अपने आप को आप थकाने के लिए तैयार हैं, कोई मामूली चीज़ नहीं है अल्लाह की कुर्बत, बहुत बड़ा मकाम है। कौन कौन दौड़ने को तैयार है मेरे साथ, कि दौड़ लगाओ, सबकत ले जाओ एक दूसरे से नेकियों में, भागना है, आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। तो इस पे कमर बांधनी है और दौड़ लगानी है, मैं पीछे ना रह जाऊं। तो समझ लें कि अपने आप को थका देने के दिन है, कि बस मैं ये कहने के काबिल हो जाऊं, अल्लाह आपकी गुरबत के लिए ना ये सब कुछ मैं कर रही हूं, अल्लाह मुझे आप अपने से करीब कर लें। अल्लाह अपना बना लें, या अल्लाह अपने से दूर ना करना। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी हमारे रमज़ान में यही कोशिश रहेगी, और हमारे रोज़े का स्टैंडर्ड भी इंशाअल्लाह हमने हाई करना है। इसी तरह किस तरह हाई होगा कि रोज़े में ये ध्यान रखना है, वेरी इम्पोर्टेंट, कि आपका रोज़ा ख़राब नहीं हो। किस किस चीज़ों से ख़राब होता है? झूठ बोलने से, गीबत करने से, ताने देने से, शाउट करने से। ये तो चीज़ें हदीस में आ गई हैं ना, झूठ की भी और गीबत की भी और शाउट करने की भी। इसके अलावा भी जो आप ताने दे सकते किसी को, पर तंज कर सकते, क्रिटिसाइज़ करना किसी को, ये सब चीज़ें, इनसे रोज़ा ख़राब हो जाता है। इनको प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि हम अपने रूटीन में ना आगे पीछे जैसे बोल रहे होते हैं उसी तरह बेध्यानी में हम बोलते चले जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, रोज़ा है बहुत नाजुक है, कहीं इसके ऊपर कोई आंच ना आ जाए, तो गंदी आदतें जो है ना वो छोड़नी ही तो है हमने रोज़े में। अच्छा क्या होता क्या कि रमज़ान शुरू होता है ना, पहला एक हफ़्ता तो हमें ज़रा अपने आप को उसमें रूटीन में लाने में ही लग जाता है। पहला 1 वीक जो होता है हमारा क्या होता है, बस अभी सुस्ती से जाग रहे हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता नहीं, जो ही आपने रमज़ान का चांद देखा बस दौड़ लगा दें, दिन कम है, वक्त कम, मुकाबला सख्त, ये समझ लें। तो इसलिए आज से ही दौड़ लगानी है, इंतज़ार नहीं करिएगा आखिरी अशरे का, आगे का। और आज हम मेरी ज़ुबान से ये याद रखें कि कोई ऐसी बात ना निकले कि मुझे अल्लाह ताला से दूर करते जो, मुझे बख्शिश से दूर करते जो, ये ना हो कि उल्टा आपको नाराज़ी कर दूँ। तो बड़ी हिफाजत करिएगा अपने रोज़े की, बख्शिश हो गई तो हमारा काम बन गया, हम साफ सुथरे हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला से कुर्ब हासिल हो जाएगा। तो बख्शिश को पाने के लिए अब हम क्या करें, इसकी शुरुआत हम करते हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि बख्शिश की बात है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दूसरों के साथ वही सलूक करो जो अपने लिए पसंद करते हो। हम अपने लिए पसंद कर रहे हैं कि हमें बख्शिश मिल जाए, राइट? तो दूसरों को भी बख्श देना, फिर दूसरों को भी माफ़ कर दें। हम माफ़ करेंगे ताकि हमें माफ़ी मिले, और माफ़ करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप सिर्फ एक बात अपने जहन में रखें। एक बात को अगर आप याद कर लेना, बहुत आसान होगा आपके लिए माफ़ करना। वो एक चीज़ क्या है? मौत। सोचें अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं माफ़ कर दूंगी, या ग्रजेस लेकर अल्लाह ताला के पास पहुंचूंगी? जिसने दिल में ग्रजेस पाल रखे हैं ना, कीने, बुग्ज़, तो उसकी दुआ भी नहीं कबूल होनी इस महीने में, चाहे लैलतुल कद्र हो चाहे कुछ भी। तो इसलिए इंशाल्लाह ये सारे ग्रजेस साफ करने हैं, और इसके लिए माफ़ कर देना, जाने देना है। दूसरी, आज इंशाल्लाह आप ये चीज़ करें, अपने अजीज़ों को फ़ोन करें, एक तो इससे सिला रहमी भी हो जाएगी, ताल्लुकात जुड़ भी जाएंगे, जिनसे नाराज़गी है ना, जिनसे दिल में ग्रजेस हैं, तो उनको कॉल करें, उनको रमज़ान मुबारक कहें, आज के इस प्रोग्राम में से कुछ शेयर करें उनके साथ। देखिए बहुत ज़रूरी है कि जिनसे, जिन रिश्तेदारों से ताल्लुक टूटे हुए हैं, उनसे दोबारा जोड़ दिए जाएं। सूरह बकरा में आयत 27 अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक वो लोग जो अल्लाह से पक्का अहद करने के बाद तोड़ डालते हैं, और उन रिश्तों नातों को भी तोड़ डालते हैं जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, और ज़मीन में फसाद फैलाते फिरते हैं, तो ऐसे लोग तो बड़े खसारे वाले हैं, बड़े नुकसान वाले हैं। तो इन ताल्लुकात को तोड़ना नहीं है, जो रहमी रिश्ते हैं, जो खूनी रिश्ते हैं, इनको तोड़ सकते ही नहीं हैं आप। तो इंशाल्लाह ताला जिनसे भी नाराज़गी नहीं भी है, जिनके साथ आप के अच्छे ताल्लुकात भी हैं, उनको भी आज कॉल करें, ताकि कोई भी दिल में बात हो तो निकल जाए। अच्छा, एक अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का जो बेहतरीन तरीका है ना, और जो इस महीने से भी बहुत मुनासबत रखता है, वो है अल्लाह ताला के कलाम से करीब होना। देखें, हम अल्लाह ताला को देख नहीं सकते, उसको सुन नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, मगर उसका कलाम हमारे पास है। उस कलाम के साथ इस महीने में जुड़ना, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको सीखना, उसको याद करना, कुछ भी हो, बस आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कुरान के साथ गुजारना है। मसलन आप खाना बना रही हैं तो आप अपने जो हिफ्स आपने किया हुआ है उसको ही रिवाइज़ कर लें, कुरान, सबसे ज़्यादा कुरान, या फिर तिलावत सुन लें, कुछ ना कुछ ज़रूर करना। और आज से इंशाल्लाह आपने फर्स्ट पारा शुरू कर देना। आज आज कोशिश करें कि आज 1.5 पारा आप पढ़ लें। इसमें आप सूरह फातिहा से स्टार्ट लेंगे ना, सूरह फातिहा की फजीलत क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू सईद बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले पहले कुरान की सबसे अजीम सूरत ना सिखा दूँ? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हमने मस्जिद से निकलने का इरादा किया तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था कि आप मुझे कुरान की सबसे अजीम सूरत सिखाएंगे। आपने फरमाया वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, ये कुरान की सबसे अजीम सूरत है। तो एक तो आपने आज ये स्टार्ट करनी है, और उसके बाद आपकी सूरह बकरा स्टार्ट होगी। सूरह बकरा के बारे में एक बहुत ही प्यारी हदीस बुखारी में आती है, जो आपको मैं बताऊंगी तो आपको सूरह बकरा और ज़्यादा प्यारी लगेगी। हज़रत सैद बिन हज़ीर बयान करते हैं कि वो रात को सूरह बकरा पढ़ रहे थे, तो उनका घोड़ा जो था वो करीब बंधा हुआ था। अचानक घोड़ा बिदकने लगा, वो खामोश हो गए तो घोड़ा भी ठहर गया। फिर वो पढ़ने लगे, फिर घोड़ा बिदकने लगा, फिर वो खामोश हो गए, फिर घोड़ा ठहर गया, फिर वो पढ़ने लगे तो फिर घोड़ा बिदकने लगा। इसके बाद वो पढ़ने से रुक गए, क्योंकि उनका बेटा जो था याहिया वो करीब ही सोया हुआ था, और उनको डर था कि घोड़ा कहीं उसके ऊपर नहीं चढ़ जाए, उसे ना तकलीफ़ पहुंचा दे। जब उन्होंने अपने लड़के को वहां से हटा लिया तो आसमान की तरफ सर उठाया तो आसमान नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ एक छतरी नज़र आ रही थी जिसमें इतने सारे चिराग जड़े हुए थे जैसे आप सोचें कि कोई अम्ब्रेला, उसमें लाइट्स जली हुई हैं। जब सुबह आई तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारा किस्सा सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने हुज़ैर तुम पढ़ते रहते, ए इब्ने हुज़ैर तुम पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे डर लगा कि कहीं यहया को मेरा घोड़ा ना कुचल दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो उन्होंने बताया था ना, वो उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आसमान पे मैंने देखा कि इस तरह से चिराग जड़े हुए हैं जैसे एक छतरी सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो वो क्या थे? फरमाया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो फरिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज़ सुन के करीब आ गए थे। सुभान अल्लाह, इस तरह ये सूरतें अट्रैक्ट करती हैं, जब आप खूबसूरत आवाज़ में प्यारे तरीके से मोहब्बत के साथ अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं तो फरिश्ते ऐसे अट्रैक्ट होते हैं। और अल्लाह ताला जिस आवाज़ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो फरमाते हैं, वो जब इंसान कुरान खूबसूरत तरीके से पढ़ता है। तो इंशाल्लाह आज बहुत प्यारे तरीके से, ऐसे नहीं कि सर से उतारने वाला नहीं, बड़ी मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह ताला कोशिश करनी है कि हम इंशाल्लाह 1.5 पारा आज पढ़ लें। अच्छा, अगली चीज़ जो अल्लाह ताला के कुर्ब में हमें मदद देगी, जिससे हम स्टार्ट लेंगे, तो जहाँ जहाँ कुरान में आता है ना, अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं इन लोगों से, अल्लाह मोहब्बत करता है इनसे, तो वो भी हम साथ साथ देखते जाएंगे, ताकि, क्योंकि हमें अल्लाह ताला का कुर्ब चाहिए ना, तो हम वो काम क्यों ना कर लें जिनसे अल्लाह ताला को मोहब्बत है, जिन लोगों से, तो हम भी वही बन जाते, इंशाल्लाह अल्लाह को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। तो एक चीज़ जो आती है कुरान में भी, वो है कि अल्लाह ताला तहारत हासिल करने वालों से मोहब्बत करते हैं, पाक। अगर हम पाक नहीं हैं तो देखिए हमारी तो नमाज भी कबूल नहीं है। वैसे भी मोमिन तो पाक ही होता है ना, आपको पता है जब मौत के फरिश्ते आते हैं जान निकालने के लिए मोमिन की, तो कहते हैं पाक रूह जो पाक जिस्म में थी। इसका मतलब मोमिन पाक होता है, उसकी रूह भी पाक, उसका जिस्म भी पाक। तो रूह पाक करने का तो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश में लगे रहेंगे, लेकिन फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका जिस्म पाक हो। इस रमज़ान में अपनी तहारत का ख़ास ख्याल रखें। गंदे मंदे इस तरह के लोग तो इंसानों को भी नहीं अच्छे लगते ना, मैले कुचैले, बाल बिखरे हुए हैं, स्मेल मुंह से आ रही हो, पसीने की बू आ रही है, तो इंसानों को भी नहीं अच्छे लगते। तो आप सोचिए, हम अल्लाह ताला का कुर्ब चाहते हैं, तो हम गंदे मंदे रह के कुर्ब ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना। तो हमने पाक साफ रहना है, अपना गुसल का अहतमाम करें, कंघी करके रखें। देखिए हम रोज़े से हैं, अल्लाह ताला को तो रोज़ेदार के मुंह की जो स्मेल है, उसके रोज़े की वजह से, गंदगी की वजह से नहीं, रोज़े की वजह से जो मुंह की स्मेल, अल्लाह ताला को मुश्क से भी ज़्यादा अजीज़ है। इंसान अल्लाह के इतने करीब हो जाता है, फिर वो गंदा हो, नाक से कान में एक्सक्रीशंस हो, उनको साफ़ करें, मुंह को भी साफ़ सुथरा रखें। और इस चीज़ में स्पेशली आप लोगों ने अपनी मिसवाक तो निकाली होगी ना, हर रमज़ान में मैं आपसे ये कहती हूँ, मिसवाक का ज़रूर एहतमाम करें। मिसवाक पे कितना ज़ोर क्यों है, और टूथब्रश से क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि स्पेशल जो मिसवाक सफाई कर सकती है, टूथब्रश नहीं कर सकता। चलें आप बाकी दिनों में नहीं भी यूज़ करते मिसवाक, इस महीने में ज़रूर इस्तेमाल करें। एक तो हमें आदत भी पड़ जाएगी, दूसरे सबसे बड़ी जो बात है जिसकी वजह से मैं हमेशा आपको कहती हूँ और जिसके लिए हम कोशिश भी करेंगे, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक जो है वो मुंह के लिए तहारत का सबब है। जो मुंह की तहारत जो है ना, हम अभी तहारत पे बात करें ना, कि तहारत वाले लोगों से अल्लाह को मोहब्बत है, तो मिसवाक से मुंह की तहारत होती है। और नंबर टू, जो हम चाहते हैं अल्लाह की रज़ा मिलती है। आपने कभी सोचा होगा मिसवाक से अल्लाह राज़ी होता है? बस तो फिर कौन सा मुश्किल काम है ये। और मिसवाक के मज़े की बात ये, मिसवाक आप रोज़े में भी कर सकते हैं। तो अब आप मसलन बैठे हुए हैं ऐसे ही, अब आप थक गए हैं, कुरान पढ़ के भी थक गए हैं, कोई और भी चीज़ ज़हन में नहीं आ रही, अब रोज़ा भी लग रहा है, अब कुछ नहीं करने का दिल चाह रहा, चलो मिसवाक ही पकड़ के करना शुरू कर दो। क्योंकि एवरी मिनट हमने चेक करना है ना कि हमारा ये मिनट प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है, हमारा ये मिनट अजर हमें कैसे दिला सकता है। तो चलो मिसवाक करना शुरू कर दें, और जहन में रखिएगा अल्लाह ताला इससे खुश होते हैं, और इससे मुझे तहारत मिलेगी, और अल्लाह ताला को तहारत वाले लोग पसंद हैं। तो इसमें मुंह की तो हमारी तहारत हो गई, जिस्म से भी पसीने की बू ना आए, फ्राइड फूड की और इस तरह की स्मेल के साथ मस्जिद ना जाएं कि आपके स्काफ में से, अबाए में से, अल्लाह माफ़ करे, कि पकौड़ों की और इस तरह की चीज़ों की स्मेल आ रही हो, नहीं ये नहीं करना। कोशिश करें कि जब आप तरावीह के लिए जाने लगे, मिसवाक हाथ में ले लें, गाड़ी में करते चले जाएं, अदरवाइज घर से करके जाएं तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा एक चीज़ और, जो कि जैसे हमने कहा बख्शिश हमें चाहिए इस महीने में, तो एक चीज़ हमें जो बख्शिश के लिए फ़ायदा देगी ना, वो चीज़ है जिसका माना ही है गुनाहों को जला देने वाली। पता है वो क्या चीज़ है जो गुनाहों को जला देती है, बर्न कर देती है? सलाह। इसका रूट ही है सौद लामवाओ, इसका मतलब होता है जला देना। तो नमाज जो है वो गुनाहों का कफारा बन जाती है। तो हर नमाज को इंशाअल्लाह ताला आज हमने ये सोच के पढ़ना है। एक तो हमारे पर फ़र्ज़ है ही है, ठीक है, वो तो हम, ये तो हमारे जहन में होती ही है सोच कि भाई फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ तो अदा करना है, नहीं अदा किया तो गुनाह होगा, ये तो सोच होती है। लेकिन आज ये सोच के साथ हमने नमाज पढ़नी है कि मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये तलवार है जो गुनाहों को काट देती है। हदीस से भी हमें पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज का वक्त आ जाए तो जो आदमी अच्छा वज़ू करे, अच्छा वज़ू क्या होगा कि हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, अच्छा वज़ू कौन सा होता है, और अच्छा खुशू और रुकू करे, तो ये नमाज उसके पहले गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगी, जब तक कोई कबीरा गुनाह ना करे। और ऐसा हमेशा होता रहता है। इसका मतलब है एवरी नमाज जब आप अच्छी तरह वज़ू करके अच्छे खुशु से, कंसंट्रेशन से आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके गुनाहों को वो काट देती है, ख़त्म कर देती है, डिलीट कर देती है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ नमाज नहीं कहा गया, कहा गया कि वजू भी अच्छा हो, खुशु भी हो। मुझे उम्मीद है आप लोग लिखते जा रहे होंगे ना हमने क्या करना है आज, आज हमने क्या चीज़ें जहन में रखनी है। लिस्ट इसकी बनानी इसलिए ज़रूरी है, जो जो मैं बातें आपको बता रही हूँ, कि देखिए अगर आपने कोई टारगेट अचीव करना है ना, तो आपके सामने होना चाहिए कि ये मेरे गोल्स हैं आज के, वरना पूरा दिन गुजर जाएगा, काम कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम भी रखा है कि ऐसा ना हो पूरा दिन गुजर जाए, हम सोचते ही रह जाएं। एक दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेगा, आधा रमज़ान गुजर जाएगा, फिर पूरा ही गुजर जाएगा और हम सोचते रहेंगे अच्छा हमने तो ये करना था, वो ये ही नहीं हो सका। तो वक्त तो हम वक्त को रोक नहीं सकते हाँ, मगर अपनी स्पीड को तो तेज़ कर सकते हैं ना। खुद को ऑर्गेनाइज करें, लिमिट कर दें रमज़ान में ऐसी चीज़ों को जो कि गैर ज़रूरी है ना, उनको लिमिट कर दें। यानी या उनको ये कह सकते हैं कि उनको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दें। जो बहुत ज़रूरी काम है, जिनके बगैर चारा नहीं या कोई मसला हो जाएगा, सिर्फ उनको करें। अदरवाइज जो काम पेंडिंग हो सकते हैं, रमज़ान के बाद हो सकते हैं, प्लीज़ उनको रमज़ान के बाद के लिए उठा रखें। ये ना हो ये वक्त ज़ाया हो जाए, ये तेज़ी से हमारे हाथों से निकल जाएगा। और कामों का क्या है, बाकी काम तो देखें, काम वैसे तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, और बाकी 11 महीने हम यही में तो लगे रहते हैं। तो इसलिए प्रायोरिटाइज करें कौन से काम ज़रूरी हैं जो अभी करने हैं, और कौन से काम हैं जो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। याद रखें, जब आपकी नज़दीक, आपकी नज़र में किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस होगी ना, तो वो ज़रूर हो जाएगा। अगर आपके नज़दीक रमज़ान की इम्पोर्टेंस है, तो इसके गिर्द आपके सारे काम घूमेंगे कि मैंने ये काम रमज़ान में करने हैं, रमज़ान को अपना बेस्ट रमज़ान बनाना है। पता नहीं, ये नहीं पता कि अगले साल हमें रमज़ान मिले कि नहीं मिले। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो महीना मिल गया जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगते थे, अल्लाह हमें ये महीना मिल जाए। और ये भी नहीं पता कि अगर महीना ये मिल गया नेक्स्ट ईयर, तो हमारी सेहत की क्या हालत हो और हमारे ईमान की क्या हालत हो, हम नहीं जानते। तो इसलिए इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, बड़ी कीमती चीज़ आपको मिली है। अभी उस दिन मस्जिद में इमाम साहब कह रहे थे कि कोई खातून थी, उनको कैंसर हो गया, लास्ट ईयर की बात है, और वो कहने लगे वो बस ये दुआ कर रही थी कि किसी तरह रमज़ान मुझे मिल जाए। तो कहते हैं लेकिन बड़ी दुआएं की, मगर जो तकदीर में लिखा होता है 29 शाबान को उनकी डेथ हो गई। तो कोई नहीं जानता अगले साल वो किस जगह किस हालत में हो। इसलिए इस रमज़ान को अगर आप ये समझ के स्पेंड करेंगे ना, दिस माइट बी माई लास्ट रमज़ान, हो सकता है मेरा आखिरी रमज़ान हो, क्या पता मिले ही ना दोबारा, तभी इंशाल्लाह आप इसके अंदर मेहनत के साथ काम कर सकेंगे। और अगर आप इसको ऐसे ही लेंगे कि बस अच्छा चलो रमज़ान तो हर साल ही आ जाता है और बस आता ही रहेगा सारी ज़िंदगी, और भी मेरी बहुत ज़िंदगी पड़ी है और अभी मैंने बहुत रमज़ान देखने हैं, तो फिर नहीं वो आपकी दौड़ लग सकती। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो अल्लाह ताला के करीब करती है ना, वो है उसका ज़िक्र। ये तो हदीस से भी साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ हूँ जब तक वो मेरा ज़िक्र करता रहता है और उसके होंठ मेरे ज़िक्र से हिलते रहते हैं। सुबहान अल्लाह, जब मेरे होंठ हिल रहे हैं ना अल्लाह के ज़िक्र से, तो उस वक्त मुझे ये तसल्ली होनी चाहिए और इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह इस वक्त मेरे साथ है। सुबहान अल्लाह इस वक्त मेरे साथ है क्योंकि मैं उसका ज़िक्र कर रही हूँ। तो हमारा सारा दिन ऐसा होना चाहिए कि दिल रब की याद में अटका रहे, ध्यान बार बार अल्लाह की तरफ जाए। रोज़ा है ही इस चीज़ का नाम, बार बार ध्यान अल्लाह की तरफ जाना चाहिए किसी तरफ। अगर एक तो होता है ना फॉर्मल जिक्र, कि जो मैं अब आपको बताऊंगी कि आज का आपका जिक्र ये है। दूसरा है इनफॉर्मली, कि आप सारा दिन अल्लाह ताला को याद करते रहें, किसी तरफ आपकी नज़र उठे तो रब की याद को साथ लौटे। मसलन कैसे, आपने चूल्हे में आग जलाई, आग देख के जहन्नुम की आग याद आ जाए। गर्मी का दिन है, बाहर आप निकलते हैं, हशर के दिन की गर्मी याद आ जाए, पसीना याद आ जाए। कोई सख्त आवाज़ सुने तो सूर फूंकने की आवाज़ याद आ जाए। कोई दर्द उठे तो जहन्नुम में जाने वालों का दर्द याद आ जाए। कोई नेमत मिले तो जन्नत की नेमतें याद आ जाए। अंधेरा हो जाए तो कब्र का अंधेरा याद आ जाए। तो इस तरह से भी रात को याद कर सकते हैं। सहरी और अफ्तारी भी करें तो भी अल्लाह याद आए। खाने लगे ना सहरी में या अफ्तारी में तो भी अल्लाह ताला को याद करें, क्योंकि हदीस में आता है अल्लाह ताला उस बंदे से बड़े खुश होते हैं जो खाना खाए तो अल्लाह की हम्द बयान करें, पानी पिए तो अल्लाह की हम्द बयान करें। ठीक है, तो अल्लाह ताला खुश होते हैं उसे, हमने तो अल्लाह ताला को खुश करना है इंशाल्लाह। तो आज का जो जिक्र है आपका, वो है जिसे हम स्टार्ट लेंगे, वो है वो बेहतरीन जिक्र, जिसके बारे में हदीस में भी आता है कि बेहतरीन जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक हदीस में ये कि चार चीज़ें इस महीने में कसरत से करो, इनकी कसरत रखो, इनमें दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम अपने रब को राज़ी रखोगे। पूरी चार नहीं, अभी आपको बताऊंगी, दो जिनसे रब को राज़ी करना है वो कौन सी हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि हमारा एम है ना रब को राज़ी करना, वो खुश हो गया तो वो अपने करीब कर लेगा, वो नाराज़ हो जाता है तो दूर कर देता है अपने से, है ना, ऐसा ही है ना। तो जब हमने करीब होना है तो उसको खुश करेंगे तो करीब होंगे। तो वो दो चीज़ें क्या हैं, कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार। तो आज के लिए तो कलमा तैयबा का ही इंशाल्लाह ताला हम वर्द करेंगे। तो पूरा दिन यही कोशिश रहनी चाहिए कि कलमा हमारी ज़ुबान पे जारी रखे रहे। आज की जो दुआ है, यूं तो आप चलते फिरते दुआ करें। दुआ कैसे करनी है? अच्छा, कभी कभी हमें दुआ भी नहीं करनी आती ना। एक तो मसनून दुआएं हैं ना जो मैं आपको इंशाल्लाह बताती रहूँगी, तो ज़िक्र की तरह दुआ भी एक वो भी दुआ है जो कि हम अपनी ज़ुबान में मांगते रहें। दुआ पता है कैसे मांगेंगे? सबसे पहले अपने से स्टार्ट करते हैं दुआ, यानी कि फलां फलां की तो दुआ करते जा रहे हैं, अपने आप को भूल ही गए। नहीं, अपने से स्टार्ट करेंगे। और दुआ मांगने का तरीका, दुआ मांगने का तरीका ये है कि जैसे आप किसी डॉक्टर के जाएं या किसी बहन को कॉल करें, कैसे अपना दुखड़ा सुनाती हैं, आ यहाँ पे दर्द है और ऐसे है और सुबह उठी तो ये हुआ और फलाने वक्त में वो हुआ और ये खा लिया था तो ऐसे हो गया है, यहाँ पे तकलीफ़ है। इसी तरह अल्लाह ताला के सामने अपना दुखड़ा रखते हैं, अल्लाह ताला ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे है, अल्लाह ताला इसको ऐसे ठीक कर दें, फलां फलां मसले को ऐसे हल कर दें। इस तरह करके अपना दिल रब के सामने हल्का कर दें, अपना दिल उसके सामने रख दें। दिल खोल देना होता है ना, जैसे हम कहते हैं किसी को मैंने अपना दिल खोल के रख दिया उसके आगे, इस तरह करना है। ठीक है, तो दिल खोल के रख देना। और ये सारा दिन नहीं हो सकता, क्योंकि आप रोटी डाल रही हैं तो तब आप दिल खोल के नहीं रख सकती। उसके लिए बेस्ट टाइम इज़ जब आप सहरी के लिए उठने लगे तो थोड़ा पहले का अलार्म लगाएं। सारे सोए होंगे, आप उठ के मुसल्ले पे बैठ जाएं और अल्लाह ताला को कहती जाएं, अल्लाह ताला बच्चे पढ़ाई नहीं करते, या अल्लाह ताला इनका पढ़ाई में दिल लगा दे, अल्लाह ताला हस्बैंड की जॉब के मसले हैं, या अल्लाह उनकी जॉब सही कर दे, अल्लाह हलाल रिस्क दे दे, अल्लाह कर्ज़ की मुश्किलात से निकाल दे। इस तरह से करके जो जो आपके मसले हैं जितने भी, तो अपने से स्टार्ट करें, बच्चों पे आए, हस्बैंड पे आए, बहन भाइयों पे, माँ बाप पे, सब सब इस तरह फिर आगे से आगे सर्कल बड़ा होता जाए, फिर उम्मत के ऊपर। ठीक है, इस तरह से दुआ मांगनी है। तो दुआ कोई फॉर्मल चीज़ नहीं कि मैं आपको सिखा दूँ ये आप अल्फाज बोलें, नहीं, दुआ वही है जो आपके अपने दिल से निकलेगी। प्यारे तरीके से दुआ मांगे, सोचिए किसी से कुछ मांगना हो कैसे मांगेंगे, कैसे मांगेंगे, मिन्नत समाजत करके भी, प्यारे तरीके से बोल के। ये थोड़ी है कि आप मांग इधर रहे हैं और आप तक ध्यान कहीं और है, वो नहीं। ठीक है ना, तो सारा दिन दुआएं मांगनी, दुआ से भी इंसान अल्लाह से करीब होता है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि बंदा उसे मांगे। और सहाबा कराम तो छोटी छोटी चीज़ भी, इवन शू लेस भी अगर टूट जाता, जूती का तस्मा, तो वो भी अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह ताला ये दे दे। नमक भी नहीं होता था ना, नमक भी अल्लाह से मांगते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ये चीज़ चाहिए, तो इसमें कोई शर्म नहीं है अल्लाह से मांगने में। आज की जो दुआ है वो सूरह मोमिनून की लास्ट आयत है, रब्बिग फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, 18वां पारा है ना सूरह मोमिनून, उसकी लास्ट आयत। अल्लाह ताला मगफिरत कर दे, या अल्लाह रहम कर दे, तू तो सारे रहम करने वालों में सबसे बेहतरीन रहम करने वाला, तुझसे ज़्यादा भी भला कोई रहम करने वाला हो सकता है? अल्लाह जितने मेहरबान है उन सब में तू सबसे ज़्यादा मेहरबानी करने वाला, तो अल्लाह बख्श भी दे और रहम भी कर दे। तो इंशाल्लाह इस दुआ को मांगना है आज आपने, और बाकी अपनी ज़ुबान में तो मांगते ही रहना। अब उन लोगों की बात जो रोज़ा नहीं रख सके, चाहे किसी बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, या नापाकी की वजह से, तो उनके लिए भी ऐसे नहीं है कि रोज़ा नहीं रखा तो अब कुछ भी नहीं कर सकते। रहमत पाने के और बहुत से काम हैं, जैसे जितने भी मैंने आपको काम बताए हैं, रोज़ इंशाल्लाह बताऊंगी, उनको तो करते जाए ना। जैसे जिक्र है, दुआएं हैं, सदका है, नफल हैं, दुरूद हैं, ये इस्तगफार है, तो ये सारी चीज़ें करते जाए, तरावी है। हाँ, नापाकी में नहीं कर सकते, मगर अगर आप किसी और उज़र की वजह से आपने रोज़ा छोड़ा हुआ, तो ये सब तो काम कर सकते हैं। और जो नापाक हैं वो भी नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते, बाकी काम तो करें, कुरान की तफसीर ही पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश कीजिए कि रात की घड़ियों से भी फ़ायदा उठाएं, दिन से भी फ़ायदा उठाएं, ठीक है? थोड़ा सा कम करें अपने सोने को, लंबे लंबे लंबी तान के सो जाना, ये रोज़ा गुजारने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। और रात की जो प्रेशियस मोमेंट्स हैं उनको ज़रूर कैप्चर करना, ओके? हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में एक घड़ी है, जो भी मुसलमान इसमें अल्लाह से कुछ मांगता है, कोई भी भलाई मांगता है, तो अल्लाह ताला उसको देते हैं, और ऐसा हर रात होता है, यानी रात की घड़ियाँ कबूलियत की घड़ियाँ हैं। तो रात को तो नहीं जाने देंगे ना, ज़ाया तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बल्कि एक जगह आता है तिब्रानी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी रात को उठ के अपनी बीवी को जगाता है और अगर उस पर नींद का गलबा हो, तो उसके चेहरे पे पानी छिड़क कर उठाता है, यानी उठने के लिए, उसके लिए उठाने के लिए, और फिर दोनों अपने घर में खड़े होकर रात का कुछ हिस्सा अल्लाह की याद में गुजारते हैं, तो इन दोनों की मग़फ़रत कर दी जाती है। दोनों मियाँ बीवी उठे और अल्लाह के सामने खड़े हुए ना, दोनों की मग़फ़रत कर दी जाती है। और आपके शौहर नहीं भी उठते, चले आप तो उठे, लेकिन किसी और को भी जगा देना और ऐसे टाइम में अपने साथ खड़ा कर लेना, तो इसे देखिए अजर कितना बढ़ गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप काम कीजिए, छोटे छोटे आपको काम, छोटे ये देखने में छोटे हैं, अजर के लिहाज से बहुत बड़े हैं, तो छोटे छोटे काम हैं, करने में आसान है लेकिन अजर में ज़्यादा है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये सारे टारगेट्स आप मीट करें, ठीक है? नमाज में भी, तहारत में भी, कुरान में भी, जिक्र में भी, दुआ में भी, इसी में हमारा इंशाल्लाह सारा वक्त गुजरे। अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान से बेहतरीन फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह हमसे कबूल फ़रमाए जो हम छोटे काम भी करें तो अल्लाह ताला उनको अपनी शान के मुताबिक कबूल फ़रमाना और अजर अज़ीम अता फ़रमा देना हम सबको। अल्लाह ताला हमारा सियाम और क़ियाम कबूल फ़रमाए इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।